अपने चिंतन की धारा बदल दो, रोग चिंता का मिट जाएगा। कर तपस्या करो याद शिव को, दिल को आराम मिल जाएगा।
ओम शांति। सभी प्यार से बोलो ओम शांति। आप सभी बाबा के बहुत बहुत स्नेही सिकी लधे बच्चे, बहुत दूर दूर से, भारत के कोने से, चाहे पूर्व दिशा से ईस्टर्न जोन से आए हैं, चाहे तमिलनाडु जोन से आए हैं, और साथ साथ हमारे नेपाल से आए हुए सभी भाई और बहनें, बाबा के इस बेहद शांतिवन में आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है, स्वागत है। बहुत दूर से जब बाबा के घर में बच्चे पहुंचते हैं तो बाबा एक प्रश्न हमेशा पूछते हैं कि बच्चे आप दूर से आते हो या मैं दूर से आता हूं, किसका घर दूर है? बाबा का दूर है, लेकिन बाबा को आने में मेहनत नहीं लगती, एक सेकंड में आ जाता है ऊपर से नीचे। और आप सबको तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन यात्रा करके आना पड़ता है। साकार में इतनी दूर से ट्रेन का सफर करके आना, बसों का सफर करके आना, तो इतनी मेहनत से आप सभी बाबा के घर में पहुंचते हो। तो साकार में बाबा क्या कहते थे, जब बच्चे दूर दूर से आते थे मधुबन में, तो बाबा कहते थे बच्चे थके हुए आए हैं, पहले इनके पांव धो। बाबा बड़ी पतीली में पानी रख करके और बच्चों के पांव धोता था गर्म पानी से कि थकावट दूर हो जाए। तो आप सभी की थकावट बाबा ने दूर की कि अभी तक है? बाबा के घर में आते ही बाबा अपने बच्चों की थकान दूर कर देता है, क्योंकि बाबा के घर में जो बाबा की तपस्या के वाइब्रेशन है, बाबा ने जो बच्चों का आवाहन किया है, बहुत बाबा का दिल का प्यार है। और दिल का प्यार होने के कारण दिल के प्यार में कोई भी प्रकार की तकलीफ, कोई भी प्रकार की मेहनत महसूस नहीं होती। इसलिए बाबा कहते जहां मोहब्बत है वहां मेहनत कहां। तो बाबा से आप सबकी अटूट मोहब्बत है ना मोहब्बत, तब तो इतनी दूर से भाग भाग करके आते हो। और सबसे बड़ा चांस, गोल्डन चांस आपको मिला है। एक तरफ स्वउन्नति का चांस है, सेवा तो करेंगे लेकिन स्व की कैसे उन्नति की जाए, उसके लिए एकांत का बहुत अच्छा अवसर। भले बहुत बड़ी संख्या में बाबा के बच्चे इस लास्ट टर्न में आएंगे, क्योंकि बाबा का ये लास्ट टर्न है, तो जो चारों ओर बच गए हैं जिनकी इच्छा रहती है वो सभी भाग भाग करके आ जाएंगे, बिना बताए भी आ जाएंगे। तो भीड़ तो होगी, लेकिन भीड़ में होते हुए भी हम सभी बाबा के प्यार में खोए हुए एकांत का अनुभव करें, एक की अंत में रहें। इस घर में कोई भी चिंता, कोई भी फिक्र न बनाने की, न लाने की, न कमाने की। बाबा के घर में जिनको जो सेवा मिलती है वो अपनी अपनी सेवा करते और निश्चिंत रहते हैं। तो निश्चिंत रहने का, बेफिक्र रहने का एक बहुत सुंदर अनुभव, जिससे निरंतर सहज याद बनी रहे, क्योंकि याद के लिए अपने अपने लौकिक कर्म क्षेत्र पर मेहनत करनी पड़ती है। बहुत जवाबदारियां होती हैं, घर का काम है, ऑफिस का काम है, दुकान है, नौकरी है, बहुत सारे झमेले दुनिया के अंदर कैसे कैसे झमेले हैं, और उन झमेलों के बीच में रह के बाबा कहता है तुम मुझे याद करो। लेकिन अभी इस घर में आप सभी आए हो सब झमेले छोड़ करके, लेकर के आए हो ना, सभी अपने अपने स्थान पर छोड़ करके आए हो, बिल्कुल बेफिक्र बादशाह, बिल्कुल निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना, क्योंकि बाबा के घर में जितनी कमाई करना चाहो बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। दादियों की, बड़ी भाई बहनों की अच्छी अच्छी क्लासेस सुनने को मिलेंगी, और बाबा का डायरेक्ट अवतरण जहाँ पर होता है, बाबा से डायरेक्ट वरदान तो हम सभी लेंगे ही, लेकिन इस भूमि पर वो तपस्या के, बाबा के अवतरण के बहुत अच्छे सुखद वाइब्रेशंस हैं। और बाबा हमेशा हम बच्चों को कहता है, पिछली मुरली में भी यही होमवर्क हम सबको दिया है कि अभी अपनी वृत्ति से वाइब्रेशन बनाओ। वाणी से तो बहुत सेवाएं की हैं, लेकिन वाणी की सेवा पूरे विश्व को संदेश नहीं दे सकती, प्रकृति को सतो प्रधान नहीं बना सकती, कहाँ तक पहुंचेंगे हम सभी। बहुत दूर दूर कोने कोने में लोग रहे हुए हैं, इसलिए बाबा ने बहुत फास्ट गति की सेवा की एक अच्छी विधि सुना दी कि बच्चे अपनी वृत्तियों से वायुमंडल बनाओ, वाइब्रेशन फैलाओ सारे वर्ल्ड में, जिससे वो आत्माएं समीप आ जाएं। तो वृत्ति से वाइब्रेशन बनाना, किन वृत्तियों से वाइब्रेशन बनते हैं, श्रेष्ठ वृत्तियां कौन सी हैं, उस पर विचार करना, क्योंकि हम सभी चिंतन तो करते हैं, कुछ न कुछ सोच चलता है। आत्मा का पहला एक विशेष गुण है चिंतन करना, कुछ भी देखती है सुनती है फौरन उस पर उसके विचार चलने शुरू हो जाते हैं, और जब विचारों पर वो गौर करने लगती है, ध्यान देने लगती है, तो उसकी वृत्तियां बन जाती हैं, उसका दृष्टिकोण वैसा बन जाता है। कहते हैं देखने का इसका ये नजरिया है, तो दृष्टिकोण बन जाता है, हमारी वृत्तियों का चिंतन से निर्माण होता है। और जिस प्रकार की वृत्तियां कर्म में आती हैं, उसी प्रकार के संस्कार बनते जाते हैं। तो बाबा ने जो वृत्तियां रखी हैं हम बच्चों में, जिससे बाबा कई बार कहता है कि इस मधुबन का वायुमंडल इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना बच्चों को आकर्षित कराने वाला, करने वाला है, वो वृत्तियों से वाइब्रेशन ब्रह्मा बाबा की तपस्या से बना है, यहाँ के अनन्य बच्चों से बना है। और आप जहाँ पर रहते हो, आपकी भी जवाबदारी है कि हम अपनी वृत्तियों से उस स्थान के वायुमंडल को अच्छा बनाएं। आज मुरली में उसका एक जवाब था, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाबा ने आज बहुत गहरी और बहुत सुंदर मुरली चलाई। सवेरे सभी ने मुरली सुनी थी, अव्यक्त बाबा की, जिन्होंने आज रिवाइज कोर्स की मुरली सुनी हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने सुनी है, तो सभी का चिंतन चला होगा, इतनी अच्छी बाबा की मुरली सुनी। दादियों से बाबा मिले, मधुबन वालों से मिले, विदेशियों से मिले, हमारा हॉस्पिटल जो बन रहा था उन हॉस्पिटल वाले सेवाधारियों से मिले, और सबका मिलने का बाग के बाद जो वरदान मिला वो भी बड़ा विशेष था। तो आप सभी ने आज की मुरली पर चिंतन किया होगा। आज दोपहर को हमारी दादी जानकी ग्वालियर में गई हुई है, मालूम है आप सबको। तो दादी जानकी ने ग्वालियर से मुझे फोन किया, मैं बैठा था, तो दादी कहने लगी, आज की मुरली बहुत अच्छी है। क्या अच्छी लगी होगी दादी को? तो दादी ने कहा, आज की मुरली पर मैंने क्लास कराया। और वो बात दादी को जो अच्छी लगी, क्योंकि बाबा ने दादियों से ही पहले पहले बात की कि जितना समय आगे बढ़ता जाएगा, दुनिया का वायुमंडल भारी होता जाएगा, तमो प्रधानता अति की ओर जाएगी, बढ़ती जाएगी, और जितना दुनिया में वातावरण के अंदर हलचल होगी, भारीपन होगा, उतना आप बच्चे हल्के होते जाएंगे, जवाबदारियां बढ़ेंगी, सेवाएं बढ़ेंगी, लेकिन आपकी सेवाएं आपकी हल्की वृत्तियों से, आपका मन बुद्धि संस्कार जो बहुत लाइट है, हल्का है, उससे सब कारोबार ऑटोमेटिक चलेगी। तो अभी हम वही देख रहे हैं कि भले समय अनुसार हमारी बड़ी दादी जी बॉम्बे में हैं, इलाज चल रहा है, वैसे दादी की तबीयत अभी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी तक डॉक्टर छुट्टी नहीं देते आने के लिए। और दूसरी दादियां भी उम्र के हिसाब से तो आप समझते हो शरीर कैसे कैसे होते हैं, लेकिन फिर भी दादियों की पालना अभी तक हम सबको मिल रही है, भाग्य है। अब वो दादियों की वृत्तियां जो हम सभी के प्रति इतनी शुभ रही हैं, जो कल्याण की रही हैं, उन वृत्तियों से हम सभी खींच करके बाबा के समीप आ रहे हैं, और समय अनुसार बाबा कहता है, बच्चे जो तुम्हें पालना मिल रही है, साकार में अव्यक्त रूप में बाबा की पालना मिली, और अभी हमारी निमित्त दादियों की पालना हम सबको मिली, अभी हम सबको, चाहे नए हैं या पुराने हैं, हम सबको उसका रिटर्न करना है। और हम सब रिटर्न क्या करें? रिटर्न है अपनी श्रेष्ठ स्थिति। बाबा कई बार कहता है, बच्चे अपने आप को टर्न कर लो, अपने आप को परिवर्तन कर लो, जो आपकी पुरानी आदतें हैं, पुराने स्वभाव हैं, पुराने संस्कार हैं, उनको परिवर्तन कर लो, यही रिटर्न है। तो बाबा ने हम सब की, दादियों ने हम सब की जो इतनी प्यार से पालना की है, जो इतनी ऊंची वृत्तियां हम सबके प्रति रखी है, शुभ रखी है, कल्याण की रखी है, हम सबको भी उन्हीं वृत्तियों से देखते और प्रेरणा देते हैं कि बच्चे अपनी वृत्तियों को ऐसा बनाओ। तो आज के वरदान में एक बहुत सुंदर शब्द था, इसलिए मैं उसको रिपीट कर रहा हूं, आप सबका ध्यान गया होगा। बाबा ने वरदान में हम सबको कहा, हर्षित चित्त और हर्षित मुख। हमारा चित्त भी हर्षित रहे, अंदर से चित्त हर्षित रहे, और ये जो मुख है, मुखड़ा, जिसको एक दूसरे को देख करके प्रेरणा मिलती है, वो मुख भी इतना हर्षित रहे। चेहरे पर कभी उदासी, कभी चिड़चिड़ापन, कभी थकावट, कभी जोश ना आ जाए, चेहरा एकदम हर्षित रहे, मुख हर्षित रहे। और हर्षित मुख आत्माएं, हर्षित चित आत्माएं कैसे बन सकती हैं? उसके लिए बाबा ने हम सब रियल आत्माओं को याद किया। रियल आत्माएं, उनकी रॉयल्टी क्या है, याद है ये शब्द, रियल आत्माओं की रॉयल्टी, आत्माओं की रियल रॉयल्टी। अब इस पर विचार करना, सभी सोचना, क्योंकि बाबा का एक एक बच्चा, जैसे राजा का बच्चा होता है उसको कहते हैं राजकुमार, रायल, और हम सभी सतयुगी रायल आत्माएं हैं, कलयुगी नहीं, राजाई घराने की कलयुगी आत्माएं नहीं, अभी तो घराना भी नहीं रहे हैं, नेपाल में भी चलता था, वहां भी अभी लोकतंत्र हो रहा है, तो घराना भी राजाई खत्म हो गए, लेकिन
राजाई घराने की आत्माएं जरूर हैं, राजाई खत्म हुई है, घराना चलता है, उनके संस्कार, उनके रायल चलन हम सभी जानते हैं, भले कलयुग के अंदर रहे लेकिन फिर भी संस्कारों के अंदर, उनकी चलन में, उठने उठने में, बैठने में, बोलने में बहुत रॉयल्टी रहती है। लेकिन बाबा हम बच्चों को राजाओं का राजा बना रहा है, क्या बनाता है? सतयुगी राजाएं जो शरीर से भी और आत्मा से भी डबल पावन है, पूज्य हैं, आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र। बाबा कहता है मैं अपने ये जो स्कूल है वो स्कूल है जिसमें राजा रानी बनने की, प्रिंस प्रिंसेस बनने की पढ़ाई होती है। वो प्रिंस प्रिंसेस कलयुग वाले कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उनकी कॉलेजेस कैसी अच्छी होती होंगी, प्रिंस प्रिंसेस की कॉलेजेस कभी देखी हो सुनी हो, बहुत रॉयल होती हैं, बताते हैं बहुत अच्छे कोच होंगे, अच्छा अच्छा सब फर्नीचर होगा, उनके बैठने की उनकी अच्छी व्यवस्था सब प्रकार की होगी, क्योंकि कहते हैं ये रॉयल घराने का, रॉयल कुल वालों के प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। और हम सभी बाबा के बच्चे जो प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं? सतयुग के राजकुमार राजकुमारियां बनने वाले हैं, और उसकी पढ़ाई हम यहां कर रहे हैं। संगम युग पर हम सभी प्रिंस प्रिंसेस सतयुगी राजाई पद प्राप्त करने की पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए बाबा ने आज एक बहुत अच्छा शब्द उच्चारण किया कि बच्चे तुम आत्माओं की रॉयल्टी क्या है, तुम्हारी पर्सनैलिटी क्या है, तुम रॉयल आत्माएं जिनकी चार विशेषताएं हैं। चार विशेषताएं बाबा ने वरदान में सुनाई आज। पहली विशेषता है वृत्ति की रॉयल्टी, हमारी वृत्तियां कितनी रॉयल हैं। और रॉयल वृत्तियां किसको कहा जाता है? जिन वृत्तियों में कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है, व्यर्थ नहीं है, हमारी जो वृत्तियां हैं इतनी शुद्ध हैं, इतनी शीतल हैं, इतनी पावन हैं। तो बाबा ने कहा वृत्ति और दृष्टि, बोल और चलन, ये चार बातें बताई, वृत्ति दृष्टि बोल और चलन, जो चारों में सत्यता है, ये सत्यता के आधार से आपके जीवन में रॉयल्टी आई है। आज की दुनिया के अंदर ये चारों असत्य हो गए हैं, समझ रहे ना मेरी बात को, ये चारों में असत्यता आ गई, झूठ आ गया। कोई बोलता है कुछ, करता है कुछ, उसकी वाणी कैसी है? बोल और कर्म में अंतर आ गया। दृष्टि से देखता कुछ है, सोचता कुछ है, दृष्टि में भी अंतर आ गया, असत्यता आ गई। उसकी वृत्तियां भी असत्य हो गई, क्योंकि जिसको देखता है उसको देह की दृष्टि से देखता है। असत्यता क्या है? बाबा ने हम सबको बहुत विस्तार से सुनाया है। असत्यता माना असत्य जो देह है, विनाशी, विनाशी चीज को असत्य कहा जाता है। देह को देखना, देह के बारे में चिंतन करना, देह के बारे में वर्णन करना, देह के रूप और रंग पर आकर्षित होना, ये सब क्या है? क्या है? असत्य, झूठ। और सत्यता जो हम बच्चों की दृष्टि, वृत्ति, बोल और चलन में आई है, उसका पहला फाउंडेशन है कि हम इस देह को नहीं देखते। देखते हैं, अगर देह को देखते हैं माना हमारे अंदर अभी तक रॉयल्टी नहीं आई, सत्यता नहीं आई। इसलिए बाबा ने हम सबके रॉयल संस्कारों को इमर्ज किया और कहा कि हर्षित चित्त और हर्षित मुख वही रह सकता है जिसकी वृत्तियां बहुत रॉयल हैं, सत्य हैं, जिसके अंदर व्यर्थ और नेगेटिव का नाम निशान नहीं है। तो आज के दिन आप सभी बाबा की मुरली सुनकर के चिंतन करना, सोचना और देखना, क्योंकि बाबा के घर में देखने का बहुत अच्छा चांस मिलता है, अपने को देखने का, दूसरों को नहीं। यहाँ दूसरे को देखना मना है, दूसरे को देखना नहीं, ये क्या करता है, ये क्या खाता है, ये क्या पहनता है, दूसरे को देखने की आंख बंद। क्या करना? अपने आप को देखना अंदर जा करके, मेरी वृत्तियों में सत्यता कहाँ तक आई है, मेरी वृत्तियां कितनी शुद्ध और पावन बनी है। मैं देह को तो नहीं देखता, मेरी दृष्टि दैहिक दृष्टि तो नहीं है, मेरी वृत्तियां, मेरा दृष्टिकोण किस प्रकार का है, किसी के अवगुण नोट करने का, किसी से व्यर्थ लेन देन करने का, कोई बात को नेगेटिव देखने का, सोचने का, अगर कोई भी ऐसी वृत्ति हो उस वृत्ति को परिवर्तन करना। क्योंकि बाबा की श्रेष्ठ वृत्ति क्या थी, सबसे बड़ी वृत्ति बाबा की जिससे परिवर्तन हुआ वायुमंडल, त्याग वृत्ति थी। वृत्तियों में कोई इच्छाएं नहीं थी, न मान मिले, शान मिले, कोई महिमा करे, कोई प्रशंसा करे, मैं इतनी सेवा करता हूं कोई तो मुझे पूछे, मैंने इतना यज्ञ में किया है, मेरा तो कोई अच्छा स्थान ही दिया जाए। बाबा ने कभी भी अपने प्रति स्वीकार नहीं किया, दादियां भी कभी अपने प्रति स्वीकार नहीं करती। वृत्तियों में है ये, विश्व के लिए, सबके लिए है, सेवा के लिए है। आप कुछ भी लेके आओ, दादियों के पास कुछ भी लेकर के आ जाओ, ये दादी आप यूज करना, दादी पहनेगी क्या? दादी कहेगी रख दो, यज्ञ सेवा में लग जाएगी, सफल हो जाएगी। तो वृत्तियों में जो त्याग की भावना है, जो बाबा ने त्याग की भावना अंदर रखी और हमेशा बच्चों को कहा, बच्चे पहले, मैं कुछ नहीं करता हूं, सब कुछ करता था, शिव बाबा का माध्यम था, बच्चों के आगे था, लेकिन सब कुछ करते हुए ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को छिपा करके रखा, कभी भी अपना नाम नहीं किया। मुरली में भी कहता है, बच्चे कभी नहीं सोचना कि ब्रह्मा की मुरली है, कहता है ना, मैं मुरली चलाता हूं, ऐसा कभी कहता है क्या? बच्चे मैं नहीं चलाता, शिव बाबा चलाता है, शिव बाबा की मुरली है, मैं तो केवल माध्यम हूं, मैंने तो इस शरीर किराए पर दिया है तो मुझे याद नहीं करना। कितना एक नम्रचित, कितना निर्माण, कितना त्याग भावना, कभी अपनी महिमा स्वीकार नहीं की। बाबा कहता है कि बच्चे फॉलो फादर करो, समान बनने की बातें आजकल मुरलियों में बहुत आती हैं, सुनते होंगे, हमेशा बाबा कहता है बच्चों को बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना है कि मुझे बाप समान बनना है। कहां बाप और कहां बच्चा, सोचो तो, ब्रह्मा बाबा के समान बनना, शिव बाबा के समान बनना सहज है क्या? लेकिन बाबा की ऊंची नजर, कितनी ऊंची नजर है कि ये मेरे बच्चे यही तो बाप समान बनेंगे, और कौन बनेगा, और कोई तो बनने वाला नहीं है। तो जब बाबा ने ये सब किया प्रैक्टिकल में, कैसे त्याग किया, उनके उसका कारण था। आज दुनिया के अंदर जो भारीपन है, जो टेंशन पैदा हुआ, उसका एक ही कारण है, अगर अधिक न विस्तार किया जाए तो उसका एक मूल कारण है, और वो मूल कारण है इच्छाएं। इच्छाएं बढ़ती जा रही, एक इच्छा पूरी होती है, 10 खड़ी हो जाती हैं। और जब तक इंसान ने इच्छाओं पर लगाम नहीं लगाई, तब तक वो सुख से नहीं जी सकता है। जी सकता है कोई? अगर आपकी इच्छाएं बहुत हों, ये हो जाए, ये मिले, एक पूरी होगी 10 और आ जाएंगी। बाबा कहता मैं इच्छा पूरी करने नहीं आता हूं किसी की, करता है क्या? आवश्यकताएं पूरी करता है। अगर कोई जरूरी चीज है तो बाबा जरूर कहेगा बच्चे की आवश्यकता है पूरी कर दो। अगर इच्छाएं रख करके बैठोगे तो एक इच्छा के बाद 10 जन्म लेती रहेंगी, इनका बहुत फास्ट जन्म होता है। इसलिए दिल के अंदर वैराग्य हो तो त्याग हो सकता है, जब तक वैराग्य नहीं आया तब तक त्याग नहीं हो सकता। और वैराग्य क्या चाहिए? ये सब कुछ समाप्त होने वाला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा की वृत्तियों के अंदर वैराग्य था, क्योंकि बाबा ने विनाश का दृश्य देखा था कि ये सृष्टि बिल्कुल एकदम जल रही है, कलयुग में कुछ भी बचा नहीं, सब राख हो गया, खाक हो गया। शुरू शुरू में बाबा को जो वैराग्य आया, सब धंधा समेट दिया, सब बिजनेस इतना फैला हुआ, बस बाबा की याद में सेवा में समर्पित हो गया। सोचा ही नहीं कल क्या होगा, इतने बच्चे आएंगे उनको कौन खिलाएगा, कैसे यज्ञ चलेगा, क्या होगा, कुछ नहीं सोचा। अरे ये तो खत्म होने वाला, बच्चे अगली दिवाली नहीं आने वाली। विनाश देखा और सरेंडर कर दिया। इतना वैराग्य अंदर का था, शमशानी वैराग्य नहीं था, थोड़े समय का नहीं था, लेकिन अंदर का वैराग्य बाबा को सब कुछ छोड़ा दिया, त्याग करा दिया। बाबा कहता बच्चे अपने आप को देखो, हमारी वृत्तियों के अंदर वैराग्य आया है, और जब तक वैराग्य नहीं आया है तब तक कोई भी चीज का त्याग करना सहज नहीं है, छूटेगी नहीं चीज। न विकार छूटेंगे, न बुराइयां छूटेंगी, न साधन और सुविधाएं छूटेंगी, न हमारी वृत्तियों में वो श्रेष्ठता आएगी। क्योंकि वृत्तियों में अगर इच्छाएं रही हुई हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, ये साधन ये सुविधाएं ये लाइन लग जाए तो वो वृत्तियां कभी भी एकाग्र नहीं हो सकती, और अगर एकाग्रता नहीं है तो शुद्धता नहीं आती। इसलिए वृत्तियों को शुद्ध बनाने के लिए, बाबा के समान बनाने के लिए हम सबको पहले ये वृत्ति बनानी पड़ेगी वैराग्य की, त्याग की। और जब अंदर से वो वृत्ति बन जाएगी त्याग की और वैराग्य की, तो हमारी दृष्टि वैसी ही बन जाएगी, अपने आप चेंज हो जाएगी। वृत्ति से, बाबा ने इस बारी मुरली जो चलाई लास्ट में, कि वृत्ति से दृष्टि और सृष्टि का परिवर्तन करो। दृष्टि जो नहीं बदल रही है, बार बार जाती है, किसी की चीज पर चली जाएगी, किसी के रूप पर चली जाएगी, कोई की विशेषताओं पर जाएगी तो प्रभावित हो जाएंगे, किसी की बुराई पर चली गई तो उसके पीछे उसे नफरत कर लेंगे, घृणा कर लेंगे, किसी से ईर्ष्या करेंगे, किसी से वैर करेंगे, किसी से द्वेष। जितनी कमियां, जितने बुरे संस्कार इमर्ज हुए हैं इस संसार में, हम सबके अंदर प्रवेश हुए हैं, जो रावण की प्रॉपर्टी बाबा कहता है तुम्हारी नहीं है, ये सब बुराइयां, ये सब संस्कार हमारी नेगेटिव वृत्ति के कारण आए हैं, और वो वृत्तियां बाबा अभी चेंज करने की पढ़ाई पढ़ा रहा है। इतनी ऊंची पढ़ाई आप पढ़ रहे हो, साधारण पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ऐसे नहीं मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, हमने पढ़ लिया, सिर्फ इतना नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन वृत्तियों को चेंज करने की पढ़ाई है, और उस वृत्तियों के आधार से संस्कार परिवर्तन की पढ़ाई है, दृष्टि परिवर्तन की पढ़ाई है। हमारी दृष्टि किसी की चीज पर नहीं जा सकती, किसी की अच्छाई और किसी की बुराई पर प्रभावित नहीं हो सकती। हमेशा अपनी दृष्टि को देखो, क्योंकि दृष्टि से दृष्टिकोण का पता चलता है, वृत्तियों का पता चलता है, हमारी दृष्टि कैसी है। इसलिए बाबा की मुरलियां साकार में आप सभी सुनते हो, बच्चे आंखें बहुत धोखा देती हैं। बहुत साधारण भाषा में बाबा समझाता है, बहुत गहरी बात है ये जो आंखें हैं ना, जो हम देख लेते हैं, दृष्टि जहां हमारी जाती है फौरन बुद्धि चलायमान हो जाती है। इसलिए बाबा कहता बच्चे वो सूरदास था, उसने तो आंखें निकाल दी अपनी, कि भगवान का ध्यान करने में आंखें ही डिस्टर्ब कर रही हैं। ये नहीं मालूम है कि आंखें स्थूल हैं, ये तो जड़ हैं, ये हमारे को क्या परेशान करेंगी, ये तो लेंस है, इसके पीछे जो देखने वाली चीज है वो अगर शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, तो आंखें तो अपने आप शुद्ध हो जाएंगी। तो बाबा ने जो हम सबके दृष्टि का परिवर्तन किया, उस दृष्टि के परिवर्तन का आधार है हमारी वृत्तियां चेंज कर दी, हमारी मनोभावनाएं चेंज कर दी, कि आप एक आत्मा हो, आप एक शुद्ध आत्मा हो, आप पवित्र आत्मा हो, आप परम धाम से आए हो इस सृष्टि मंच पर, आप तो एक खिलाड़ी हो, आपको तो वापस जाना है। ये पढ़ाया ना, साधारण भाषा में पढ़ाया, इसलिए कभी कभी हमको भूल जाता है कि हमारी पढ़ाई पता नहीं क्या है। इतनी ऊंची पढ़ाई क्यों पढ़ा रहा है इतना बाबा साधारण भाषा में, क्यों कहता है मेरे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, भोले वाले हैं। अगर मैं संस्कृत में पढ़ाना शुरू करूं तो समझेंगे हाँ बड़ी ऊंची पढ़ाई है, लेकिन संस्कृत मेरे कितने बच्चे जानते हैं, कितने बच्चे समझ सकेंगे। इसलिए बहुत सरल भाषा में बहुत ऊंची ऊंची बातें हम बच्चों को पढ़ाई, जिससे हमारी वृत्तियां चेंज करी और वृत्तियां चेंज हुई तो हमारी दृष्टि बदल गई। अभी हमारी दृष्टि अगर जाती है किसी की देह के ऊपर, अगर किसी की चीज के ऊपर जाती है, आजकल जाती है ना, कोई की चीज देखेंगे उठा लेंगे, छिपा लेंगे, चुरा लेंगे, कोई अच्छी कोई चीज देख लेंगे उस पर बुद्धि चलेगी, चलायमानी हो जाएगी, हमारे पास भी हो, इसके पास है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसको पाने के लिए ठगी करेंगे, चोरी करेंगे, झूठ बोलेंगे, जितने पाप हो रहे हैं उसका यही तो कारण है कि उसकी दृष्टि में चंचलता आ गई। और दृष्टि में चंचलता क्यों आई, क्योंकि वृत्ति अशुद्ध हो गई। तो बाबा ने कहा बच्चे इसमें सत्यता चाहिए, ये रॉयल्टी है आपकी, जितनी उसके अंदर सत्यता आएगी, जितनी दृष्टि के अंदर शुद्धता आएगी, जितनी वृत्तियां आपकी श्रेष्ठ होती जाएंगी, उतना आपके बोल फिर बहुत अच्छे और मधुर हो जाएंगे। क्योंकि तीसरी बात है बोल की सत्यता। हम कभी बहुत कुछ बोल देते हैं, कभी कभी अपने बोल को चेक करना, सभी चेक करना, माताएं खास चेक करना। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर बोलने का रस बहुत है, बहुत बोलते हैं, तो अंदर आत्मा अपने सच्चे आनंद का रस नहीं ले सकेगी। इसलिए कम से कम 10-12 दिन आपको यहां गोल्डन चांस मिला है मधुबन के अंदर, तो सारे दिन में मैं कितना बोलता हूं वो चेक करना, ठीक है, अधिक से अधिक कितने बोल बोलता हूं गिनती करना। क्योंकि जिसका बोल पर अपना कंट्रोल है, बोल बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी एनर्जी है, और उस बोल को बाबा कहता है बच्चे इस बोल को बहुत सत्य बनाओ, वही बोलो जो सत्य है, सिद्ध होने वाला है, जो काम का नहीं वो नहीं बोलो, जो आवश्यक नहीं है वो नहीं बोलो, जो दूसरों का भला करने की बजाय उसकी स्थिति को बिगाड़ने वाला है वो नहीं बोलो। कितना ध्यान खिंचवाता है। इसलिए बोलते हम कितना है, अगर बोल पर कंट्रोल हो जाए तो बहुत समय बच जाएगा। समय नहीं है, समय नहीं कहते ना, कहां जाता है समय बहुत बोलने में। इसलिए कम से कम बोल हमारे इस समय, जितना कम बोलें, जितना मीठा बोलें, जितना धीरे बोलें, ये मंत्र एक पक्का कर लो यहां, अगर अच्छे अनुभव करने हैं तो। बाबा के घर में अगर अच्छी अनुभूति करनी है तो सबसे अच्छा साधन है कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। इसलिए बोल अगर हमारा सत्य हो जाए तो सिद्ध होने लगेगा। बोल अगर हमारे नियंत्रण में आए, जो चाहूं वो बोलूं, ऐसे नहीं बोल दिया निकल गया, क्या करूं मैं चाहता नहीं था। आज की दुनिया के अंदर जितने झगड़े पैदा हो जाते हैं ना आपस के, बोल से तो हो रहे हैं। ऐसा कुछ बोल दिया निकल गया, कहता मैं सोचा थोड़ी था, मैं चाहता नहीं था। अरे बिना सोचे कैसे बोल दिया, कुछ तो अंदर वृत्तियों में होगा तब तो बोल निकल गया। तो बहुत इस समय हम सबको बाबा कहता बच्चे तुम बहुत समझदार हो, ज्ञानी तो आत्माएं हो। इस बारी बाबा ने कहा तुम नॉलेज फुल हो। नॉलेज फुल का मतलब ये नहीं कि अगर कोई रॉन्ग चीज देखते हो तो बोलना शुरू कर दो, अंदर बिठा लो, दिल में बिठा लो। यही सीजन है जिसमें बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही है इस बारी, नई बात, कि मेरा जो तख्त है रहने का वो बच्चों के दिल का है। परमात्म तख्त बाबा कहां रहता है, बच्चों के दिल तख्त पर रहता है। भक्तों ने कहा है भगवान सर्वव्यापी है, बाबा कहता मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, लेकिन इस सीजन में कह रहा है कि बच्चे तुम्हारे को नशा होना चाहिए, तुम बोलो भगवान कहां रहता है, तो बच्चों को उत्तर क्या देना चाहिए, मेरे दिल तख्त पर रहता है। ऐसा ना, ऐसे ही बोला ना इस बारी मुरली के अंदर, जब भगवान आपके दिल तख्त पर रहता है तो दिल में कोई की किचड़ा, कोई की व्यर्थ बातें, कोई की नेगेटिव बातें तो नहीं है। अगर ये बातें होंगी तो भगवान तो वहां से खिसक जाएगा, क्योंकि वो सत्य है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है। इसलिए बहुत चेक करने की बात है, अगर मैंने किसी की व्यर्थ बातें या किसी की ऐसी बातें जो दर्द देने वाली, दुख देने वाली, चिंतन व्यर्थ करने वाली है, उनको दिल में बिठाया हुआ है। कोई बात दिल में बैठ जाती है तो बहुत दर्द देती है। कोई अगर कोई ऐसा आप बोल दे और आप उसका सोचते रहो क्या होगा? मजा आएगा? यहाँ आपको वही याद रहेगा, ऐसा उसने बोला, ऐसा उसने कहा, क्यों कहा मेरे को, बस उसका चिंतन चलता रहेगा और अंदर मन में भी आंसू और आंखों में भी आंसू आते रहेंगे। इसलिए कोई भी बात जो आपके काम की नहीं है, जो व्यर्थ है, जो नेगेटिव है, जो आपको दुख देने वाली है, बाबा कहता बच्चे ऐसा कोई बोल, ऐसी कोई बात अपने दिल तख्त पर नहीं रखना, अपने चित्त पर नहीं रखना, नहीं तो आपका दिल तख्त बाबा के काम का नहीं रहेगा। बाबा को अगर दिल तख्त पर बिठाना है तो बहुत सत्य बोल बोलो, बहुत शुद्ध पवित्र बोल बोलो, अच्छे बोल बोलो, कम बोल बोलो, मीठे बोल बोलो, हर एक के भला का सोचो और बोलो। चौथी बात जो चलन की कही है वो बहुत अंदर जाकर के झांकने की है, अंदर जाकर के देखना, क्योंकि चलन के अंदर बहुत बातें आती हैं, बहुत बातें, बहुत बड़ा विस्तार है चलन का। कभी आप लोगों ने अपनी चलन को नोट किया होगा, चलन का आधार जिस जाति जिस कुल में जन्म हुआ उसका बनता है। कहते इसकी चलन बहुत अच्छी है, इसकी चलन बहुत रायल है, इसकी चलन बहुत खराब है। तेरी चलन ऐसी, चलन माना उसका रहन सहन, बोल चाल, खान पान, व्यवहार, सब बातें चलन में आती हैं। आज बाबा ने उसको अंडरलाइन किया मुरली के अंदर, वो सत्य हो। हम सबकी चलन कैसी है? चलन की बात मैं थोड़ी हंसी की सुना दूं आपको। एक बार की बात है, हम सभी बाबा के बहुत रैल बच्चे हैं, रैल है ना, ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ऊंचा लक्ष्य हम देवता बनने वाले हैं। देवताओं की चलन कैसी होती है? बहुत रायल, फास्ट नहीं, भागेंगे नहीं इधर उधर। हमारे पास एक ग्रुप आया था यहाँ पर, मधुबन के अंदर भट्टी चल रही थी, सबको यहाँ साइलेंस का बैज पहनाया गया और सबको पक्का कराया गया कि आप सभी भट्टी में आए हो, इसलिए मौन रखना, बोलना नहीं। लेकिन चलन ऐसी है, चलन ऐसी पक्की हो गई है, जो जब यहाँ से क्लास छूटता था ना, जो भंडारे में जब जाते थे तो थाली लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते थे, गिर पड़ते थे। भोजन जहां मिलता है, भोजन लेने के लिए सैलरी नहीं, लाइन में नहीं खड़े होंगे, कहां से जल्दी चला जाऊं, इधर से उधर से छीना झपटी जैसे लगता है ना, कि बिल्कुल अनरायल। लॉयल्टी क्या कहती है? धैर्यता से जो मिलेगा, मिलेगा तो सबको ना, ऐसा तो नहीं है कि खुट जाएगा, कम पड़ जाएगा, मिलेगा नहीं। अच्छा, 5 मिनट पहले मिला या 5 मिनट लेट मिला, उससे क्या फर्क पड़ेगा? भूख तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई शरीर छोड़ देगा उसमें इतनी जल्दी, क्या होगा? लेकिन इतनी चलन हमारी ऐसी हो गई है, चलना फिरना बोलना खाना पीना फास्ट, जल्दी 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 जल्दी, मैं ही पहले ले लूं, मैं ही कर लूं। अभी टोली देना शुरू करेंगे तो सब खड़े हो जाएंगे, अरे भाई तो जोन वाइज, सेवा केंद्र वाइज बुलाया जा रहा है, आओ रॉयल्टी से दृष्टि लो, प्यार से मिलो, जाओ। भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? क्या रॉयल्टी है? रायल संस्कार आत्मा के दिखाई देने चाहिए, ऐसे नहीं हमारी रॉयल्टी, हम तो देवता बनने वाले हैं, लक्ष्य है देवता बनना, और कर क्या रहे हैं? देखना, चेक करना, सुनी सुनाई बातें नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रैक्टिकल यहां पर होता है ऐसा है। यहां बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस सुन के गए, बहुत मौन की प्रतिज्ञा करके गए, गए भंडारे के अंदर सब पानी फिर गया, खाने में लाइन में, बाबा के कमरे में, इधर उधर हलचल आवाज, ऐसा लगता है जैसे कोई मार्केट के अंदर आ गए। आप सभी बाबा के बच्चे बहुत अंदर से, एक अंदर का हो कि मैं तो राजाओं का राजा बनने वाला रायल बाप का बच्चा हूं। रायल बच्चे जल्दी जल्दी भाग दौड़ इधर उधर बहुत तक्कड़बाजी नहीं करते, बहुत रायल्टी से, बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से, बहुत धैर्यवत होकर के कार्य करते हैं। सब काम समय पर अवश्य होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ी सी संयम से, नियम से, बहुत धैर्यता से कोई किया जाए तो बहुत अच्छा लगता है, रॉयल्टी लगती है, लगता है ये बहुत रॉयल लोग हैं, बहुत रॉयल संस्कार हैं इनके, इनकी चलन बहुत अच्छी है। तो हम सभी अपनी चलन से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, इसलिए बाबा अभी हम सबका ध्यान जो खिंचवा रहा, वो कहता है बच्चे ज्ञान देने से लोग सुधरेंगे नहीं, ज्ञान तो कोई सुनना नहीं चाहता है, अभी ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, कैसे सुधरेंगे? आपके चेहरे से और आपकी चलन से, चलन पर ध्यान खिंचवा रहा है। हमारी चलन इतनी अच्छी हो, इतनी रॉयल हो, इतनी सत्यता की हो, इतनी रॉयल्टी उसके अंदर हो, जो लगे सचमुच ये ब्राह्मण कुल भूषण है। इसका अर्थ समझते हो? ब्राह्मण कुल भूषण, बाबा हमेशा ये टाइटल देता है। ब्राह्मण तो है, लेकिन वो ब्राह्मण है जो कुल का श्रृंगार है, भूषण है, आभूषण है, जेवर पहनते हैं ना। ब्राह्मण कुल दीपक है। तो अगर हम सबका ये अंदर का स्वमान बना रहता है कि हम ब्राह्मण कुल के श्रृंगार हैं, हम ब्राह्मण कुल के दीपक हैं, हमारी चलन नीति अच्छी हो जो बाबा हमारे से दिखाई दे, हमारा देखना, हमारा सुनना, हमारा बोलना, हमारा चलना, हमारा व्यवहारिक जीवन लगे सचमुच इनको भगवान पढ़ाता है। अगर ऐसे ही चल रहे हैं साधारण लोगों की तरह, हमारा बोल चाल ऐसा ही साधारण है, तू तू मैं करके बात करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, तो कौन कहेगा ये ज्ञानी तू आत्माएं हैं? ज्ञानी तू आत्माएं माना जिनके बोल में मधुरता है, सम्मान है, इज्जत है लोगों के लिए, जो बहुत धैर्यवत होकर के खान पान व्यवहार करते हैं, जिनकी दृष्टि में एक प्रमणिकता है, जिसमें एक शालीनता है, उसको कहा जाता है ये श्रेष्ठ आत्मा है, रॉयल आत्मा है। तो ऐसे रॉयल संस्कार अगर हमारे बनते जाए, चेक करना इस घर में आए हो कि सचमुच मैं बाबा का बच्चा मर्जीवा बना हूं। सबसे बड़ा बात स्मृति की रखने की है, बड़ी बात है कि हम सभी मर्जीवा हैं, मर गए दुनिया से, लौकिक जीवन से क्या हुआ, मर गए, नया जीवन मिल गया ना। अब मर्जीवा जीवन में हमारा क्या बोलचाल हो, हमारी दृष्टि क्या हो, हमारी वृत्तियां क्या हो, हमारा बोलना कैसा हो, हमारा चलना कैसा हो, जैसा बाबा चाहता है। इस बारी बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही मुरली में, बच्चे पुरुषार्थ क्या करना, तीव्र पुरुषार्थ करना है, लेकिन क्या करना है, जो बाबा कहता है, जो बाबा चाहता है, जो बाबा हमें बनाना चाहता है, बस बचे वही करना है और कुछ नहीं करना। जो बाबा चाहता है, जो बाबा हमें कहता है, वो मुझे करना है। और बाबा तो सब कुछ मुरली के अंदर कह देता है, और कहीं कहता है क्या? रोज कह रहा है मुरली के अंदर, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। तो आज की मुरली में जो हम सबको बाबा ने कहा है कि आपका बोलना कैसा हो, आपका चलना कैसा हो, आपकी दृष्टि कैसी हो, आपकी वृत्ति कैसी हो, आपकी कथनी कैसी हो, आपकी करनी कैसी हो, सभी उस पर ध्यान देना और अपने संस्कारों को चेक करना कि मेरे रॉयल संस्कार बने हैं। क्योंकि बाबा के घर में अगर कोई अनरॉयल संस्कार होता है तो पता चलता है ये अभी तक पक्का बाबा का बच्चा नहीं है, दिखाई देता है। बाबा इस घर को पता है एक टाइटल देता है मधुबन को, क्या आप लोगों ने शीश महल देखा है? शीश महल देखे हैं कभी? जहां पर शीश महल के अंदर अगर घुस जाओ ना, चले जाओ, तो अपना सारा नीचे से ऊपर तक, किसी शीशे के आगे लंबा, किसी के नीचे छोटा, किसी के मोटा, क्या दिखाई देता है शीश महल में? भिन्न भिन्न कांच लगे होते हैं, और उस कांच के सामने जाते ही पूरा अपना प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। यह बाबा का घर एक शीश महल है, और इस शीश महल में जो बाबा का बच्चा आता है उसको अपना सब कुछ दिखाई देता, अंदर और बाहर मैं कैसा हूं। लेकिन ऐसा नहीं मैं ऐसा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं कमी वाला हूँ, मेरे अंदर ये संस्कार है, दुखी होते रहो, दिल शिकस्त होते रहो। बाबा कहता ये भी ठीक नहीं है, कभी दिल शिकस्त नहीं हो। अगर कोई है कमी, है कमजोरी, है नेगेटिव संस्कार, तो क्या करो? अगर कहीं दाग लगा और कांच के अंदर, शीशे के अंदर दिखाई दे तो क्या करोगे? तो मिटा दोगे। तो बाबा कहता है उसको सोच सोच करके दुखी नहीं होना। अगर ऐसा कोई संस्कार आपको दुखी कर रहा हो तो बाबा के पास आए हो, लिख करके बाबा को दे दो, उसकी भंडारी में डाल दो, बाबा आज से मैं इसको छोड़ रहा हूं, आपकी कमी वो समाप्त हो जाएगी। लेकिन दिल की रियलाइजेशन, ऐसे नहीं डाल दिया लिख कर फिर करने लगे, दिल की महसूसता से परिवर्तन हो जाएगा। तो सभी बाबा के घर में इस शीश महल में आए हो, अपनी विशेषताओं को भी देखो, क्योंकि विशेषताएं हरेक के अंदर है। बाबा ने इस बारी कहा कि मेरा ऐसा कोई एक बच्चा भी नहीं है जिसके अंदर विशेषता न हो। जिसने मेरा बाबा कहा यह बहुत बड़ी विशेषता है उसकी। तो आप सभी समझते हो कि हम सभी कौन है? विशेष आत्माएं हैं। भगवान को हमने पहचाना है, भगवान को हमने कहा है मेरा बाबा है, तो हम सभी विशेष आत्माएं हैं। और हमारी विशेषताएं बाबा के काम में लग जाएं, बस जो विशेषताएं बाबा ने देखी और अपना बच्चा बनाया, हम बाबा के बन गए, तो बाबा कहता है कि अभी तुम मेरे हो, मेरे काम में लग जाओ। तो हमारी विशेषताएं बाबा के काम में लग जाएं और हम बाबा का नाम बाला करने के लिए निमित्त बन जाएं, ऐसी चलन, ऐसा चेहरा, ऐसी दृष्टि, ऐसा बोल, ऐसी हमारी वृत्ति होनी चाहिए। ये आज की मुरली में आज के वरदान का सार है। और मुरली का सार है कि अब संपन्न कर्मातीत स्थिति के समीप अगर जाना है तो क्या करो? कर्म करो लेकिन कर्म के वश होकर के नहीं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा रख करके नहीं, न्यारे और प्यारे होकर के करो, बहुत हल्के होकर के करो। जितना हल्के होते जाएंगे उतनी कारोबार अपने आप चलेगी। तो बाबा के दादियों के वाइब्रेशन से, उनके हल्केपन से हमारा इतना बड़ा यज्ञ चल रहा है, वृद्धि हो रही है। तो आप सभी भी भारी नहीं होना कभी। बहुत सेवाएं आ गई, क्या करूं, ये काम आ गया, ये भारी नहीं होना। बाबा बैठा है, बाबा अपने आप करा रहा है, करण करावन हार बाबा है। और हम बच्चे तो क्या हैं, क्या हैं बोलो? जैसे कठपुतली होती है ना, कठपुतली की रस्सी किसके हाथ में होती है? पीछे मालिक के हाथ में होती है। पुतलियां तो ऐसे नाचती हैं। तो करण करावन हार बाबा है और हम सभी निमित्त आत्माएं कठपुतली की तरह डांस करने वाली हैं। इसलिए भारी होने की क्या बात? तो कभी कोई सेवा में भारी नहीं होना। जितनी प्यार से, दिल से अपना यज्ञ समझ करके सेवा करेंगे, उतना आपकी दुआओं का खाता, पुण्य का खाता आपके खाते में जमा हो जाएगा। तो सभी दिल से सेवा करो, दुआओं का स्टॉक जमा करो और साथ साथ अपनी बहुत अच्छी स्थिति बना करके जाओ। भगवान के घर में अगर हमारी अच्छी स्थिति बन जाए तो और क्या चाहिए, ठीक है? तो समय हो रहा है, अभी दादियां हमारी आने वाली हैं, हम सभी याद में बैठेंगे। हलचल नहीं करना, बहुत रॉयल्टी से दादियों से दृष्टि लेना और सौगात लेना, जो यज्ञ के लिए लाए हो समर्पित करना, और बहुत प्यार से संकल्प लेना कि अभी से हम सभी बाबा के घर में आकर के कमाई जमा करते जाएं, जमा करते जाएं, ठीक है? ओम शांति।
आपकी बाबा जन्मों के हम। गम भर लेती है, जैसे सूरज की आके किरण, जैसे सूरज की आके किरण अंधियार दूर कर देती है। मुस्कान आपकी बाबा, जन्मों के गम हर लेती है। मुस्कान आपकी।